नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले में मोरन बाईपास पर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। इससे सैन्य और नागरिक विमानों के उतरने और उड़ान भरने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मंत्रिमंडल ने 1,00,000 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय सहायता से शहरी चुनौती कोष शुरू करने को मंजूरी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े विमानवाहक पोत को तैनात किया। उन्होंने ईरान के साथ वार्ता के एक और दौर का संकेत भी दिया। और कोलंबो में आईसीसी T20 विश्व कप के ग्रुप मैच में ओमान और आयरलैंड के बीच मैच जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया, जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है। एक रिपोर्ट।
पुल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री पास के लाचित घाट गए और कामरूप जिले के अमीन गांव में स्थित आईआईएम गुवाहाटी के अस्थायी परिसर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय डेटा केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने भारत के 4 शहरों के लिए पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया। इनमें गुवाहाटी के लिए 100, नागपुर और भावनगर के लिए 50-50 तथा चंडीगढ़ के लिए 25 बसें शामिल हैं। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में भाजपा कार्यकर्ताओं के बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित मोरन बाईपास पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया और लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों तथा हेलीकॉप्टरों का हवाई प्रदर्शन देखा। गुवाहाटी से अमिनुल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कल साउथ ब्लॉक में मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक हुई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि अब मंत्रिमंडल की बैठकें सेवा तीर्थ में होंगी।
अब सेवा तीर्थ में सारी कैबिनेट्स होंगी। कल इस अवसर पर कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। 13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नया प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये केवल स्थान परिवर्तन का क्षण नहीं है, यह इतिहास और भविष्य के संगम के भी पल है।
कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नोएडा सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के 11.56 किलोमीटर लंबे और 8 एलिवेटेड स्टेशन वाले एक्सटेंशन कॉरिडोर को भी मंजूरी दी गई।
नोएडा मेट्रो अक्वा लाइन को एक्सटेंशन किया जाएगा 2,254 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। बोटैनिकल गार्डन जो कि राजीव चौक की तरफ जाता है वो स्टेशन, और इधर नोएडा सेक्टर 142, फिर 143, 144। ओवरऑल एनसीआर की कनेक्टिविटी में इस प्रोजेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि इन सब जो इस लाइन के साथ कनेक्टेड एरियाज हैं वो सब के सब डीएमआरसी के ओवरऑल नेटवर्क के साथ जुड़ जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने 1,00,000 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय सहायता के साथ अर्बन चैलेंज फंड के शुभारंभ को भी मंजूरी दी। ये अनुदान आधारित वित्त पोषण के स्थान पर बाजार आधारित सुधार संचालित और परिणाम उन्मुख अवसंरचना निर्माण की ओर देश के शहरी विकास दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अर्बन चैलेंज फंड को स्वीकृति दी है। ये 1,00,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत इनोवेटिव एक मेथड लगाया जाएगा। इस 1,00,000 करोड़ के सरकार के इन्वेस्टमेंट से टोटल 4,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा अर्बन एरियाज के लिए। अर्बन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसमें एनकरेज किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अर्बन चैलेंजेस को कैसे दूर करें वो बहुत इसमें ध्यान रखा जाएगा।
भारत के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पूंजी जुटाना है।
आप देख रहे हैं इंडिया में स्टार्टअप्स मात्र 300-400 से 2 लाख से ज्यादा अभी स्टार्टअप्स हो चुके हैं और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। स्टार्टअप्स अपने आप में वो एक डेप्थ, वो एक टेक्निकल एक्सपर्टीज क्रिएट हो रही है जिससे कि डीप टेक की तरफ जा रहे हैं। तो स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, इसमें 10,000 करोड़ रुपीज का गवर्नमेंट की तरफ से फंड रहेगा, साथ में बहुत सारे फंड्स इसके साथ जुड़ेंगे।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। समिति ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। इन परियोजनाओं के पूरा होने से आवाजाही सुगम होगी, माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी, तेल आयात घटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ये सभी परियोजनाएं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत विकसित की जा रही हैं। समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर गोहपुर से नुमालीगढ़ तक 715 खंड पर 4 लेन की उच्च गति से चलने के उद्देश्य से एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना को भी मंजूरी दी। इस महत्वाकांक्षी योजना में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे लगभग 15.5 किलोमीटर लंबी सड़क सह रेल सुरंग का निर्माण शामिल है। सरकार ने तेलंगाना में हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के अंतर्गत गुड़ेबेलूर से महबूब नगर तक की राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के करीब 80 किलोमीटर लंबे खंड को 4 लेन में विस्तारित करने को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र में एनएच 160A के घोटी त्रिंबक मोखाड़ा जोहर मनोर पालगढ़ खंड को बेहतर बनाने और 2 से 4 लेन में करने को स्वीकृति दे दी है। इन सभी परियोजनाओं से देश में आवागमन, औद्योगिक विकास, क्षेत्रीय संतुलन और रोजगार सृजन के साथ नई गति मिलेगी। इससे बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत की प्रगति और अधिक सुदृढ़ होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय बजट को 2047 तक विकसित भारत का एक मजबूत आधार बताते हुए इसकी सराहना की है। वे आज इस वर्ष के बजट पर मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने इसे आर्थिक वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विस्तार और सभी नागरिकों के लिए समावेशी विकास पर आधारित एक खाका बताया।
देश के कोने कोने में रहने वाले नागरिक हरेक के लिए एक उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवती और महिलाओं के लिए ढेर सारे अवसर और खास तौर पे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है जहाँ रोजगार ज्यादा उत्पन्न होता है उसको बढ़ाना, उसके निर्यात को बढ़ाना, इसको आधार स्तंभ इस बजट का माना जा सकता है।
श्री गोयल ने बताया कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 12,21,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिसका उद्देश्य रसद लागत को कम करना और अर्थव्यवस्था को गति देना है। टेलीमेटिक्स विकास केंद्र सीडॉट ने क्वांटम सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संचार मंत्रालय ने बताया कि इस समझौते का उद्देश्य उभरते क्वांटम कंप्यूटिंग खतरों के खिलाफ देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। साथ ही उपकरणों में क्वांटम संवेदनशील क्रिप्टोग्राफिक्स एल्गोरिदम का पता लगाने के लिए संयुक्त रूप से एक स्वचालित उपकरण विकसित करना है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य हर कार्य क्षेत्र को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना और उन्हें समान कार्य अवसर प्रदान करना है। नई दिल्ली में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिला और बाल विकास पोर्टल ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर अपनी शिकायतें दर्ज कराना आसान बना दिया है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी पहुंच गई हैं। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय मंत्री वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेंगी। सम्मेलन से इतर वित्त मंत्री विभिन्न देशों के मंत्रियों और अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। झारखंड में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक बड़ी कानूनी कार्रवाई की है। अदालत ने इस संगठन के 6 सक्रिय सदस्यों को आतंकवाद, अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली से संबंधित मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला दिसंबर 2018 में लातेहार जिले के बालूमाथ इलाके में हुई छापेमारी से संबंधित है जहां पर हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के सभी जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े उन दस्तावेजों को अपलोड करें जो आयोग और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिला चुनाव अधिकारी सुनवाई के दौरान लोगों द्वारा सौंपे गए दस्तावेज की 16 फरवरी शाम 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करेंगे और अनधिकृत दस्तावेज अपलोड पाए जाने की जिम्मेदारी जिला चुनाव अधिकारियों की होगी। डाक विभाग ने देश की समृद्ध और विविध कठपुतली परंपराओं का उत्सव मनाने के लिए भारत की कठपुतली विषय पर 8 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया। विभाग के सचिव वंदिता कौल ने नई दिल्ली में सांस्कृतिक जगत की कलाकारों और सदस्यों की मौजूदगी में ये टिकट जारी किया। इस अवसर पर सुश्री कौल ने कहा कि डाक टिकट राष्ट्र की विरासत के छोटे राजदूत हैं। उन्होंने कहा कि इस विशेष अंक में उन अमर कहानीकारों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने पीढ़ियों से भारत की लोक कथाओं और मूल्यों को संरक्षित किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि सुरक्षा कर्मियों का सर्वोच्च बलिदान सदैव याद किया जाएगा और प्रत्येक नागरिकों को एक सशक्त तथा सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहीद जवानों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा, संकल्प और सेवा देशवासियों की सामूहिक चेतना में सदैव जीवित रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय उनके अदम्य साहस से प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है। अपने संदेश में डॉ जयशंकर ने कहा कि जवानों का सर्वोच्च बलिदान सीमा पार के आतंकवाद के खिलाफ हमारी शून्य सहिष्णुता की नीति को और दृढ़ करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े विमानवाहक पोत यूएस गेराल्ड आर फोर्ड को कैरेबियन सागर से मध्य पूर्व में तैनात करने की पुष्टि की है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में अमरीकी युद्धपोतों और सैन्य परिसंपत्तियों की क्षमताओं को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अमरीका के लिए सबसे अच्छी बात होगी क्योंकि प्रशासन सैन्य कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। श्री ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता के एक और दौर का संकेत भी दिया। अबूधाबी स्थित बीएपीएस हिंदू मंदिर की दूसरी वर्षगांठ आज हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वर्ष पहले इस मंदिर का उद्घाटन किया था। एक रिपोर्ट।
ये स्थल 2024 में उद्घाटन के बाद से आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक संवाद और सामुदायिक सहभागिता का एक जीवंत केंद्र बनकर उभरा है। ये सद्भाव, विरासत और साझा मूल्यों का प्रतीक है। मंदिर का निर्माण राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर और इटली के संगमरमर से किया गया है। ये मंदिर प्रार्थनाओं, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए संयुक्त अरब अमीरात तथा अन्य स्थानों से आने वाले श्रद्धालुओं को लगातार आकर्षित करता रहा है। ये मंदिर यहाँ के भारतीय समुदाय के लिए आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है और साथ ही सभी आगंतुक का स्वागत करते हुए अबुधाबी को अंतरधार्मिक संवाद तथा सांस्कृतिक सहिष्णुता के वैश्विक केंद्र के रूप में सुदृढ़ कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान से बात कर चुनावों में शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बांग्लादेश की जनता के आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ नाम से एक श्रृंखला शुरू कर रहा है। आज इसकी पहली कड़ी में हम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ चर्चा कर रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम आज शाम आकाशवाणी गोल्ड पर 5:10 से प्रसारित किया जाएगा। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप में आयरलैंड ने ओमान को 96 से हरा दिया है। कोलंबो में ग्रुप बी के मैच में ओमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आयरलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 235 रन बनाए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले में मोरन बाईपास पर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। इससे सैन्य और नागरिक विमानों के उतरने और उड़ान भरने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मंत्रिमंडल ने 1,00,000 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय सहायता से शहरी चुनौती को शुरू करने को मंजूरी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े विमानवाहक पोत को तैनात किया। और कोलंबो में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्वकप के ग्रुप मैच में आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।